Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayan. Swami Ji ke Sri Charno mein pranam. स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमने प्रार्थना की स्वामी जी से और स्वामी जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और आप समय से पहले पधार गए। बहुत बड़ी कृपा है स्वामी जी आपकी। मैंने स्वामी जी से पूछा, उन्होंने कहा कि आज सुबह ही उन्हें भगवान शंकर की प्रेरणा हुई है, श्रावण का मास है तो 31 जुलाई तक वो भगवान शंकर की महिमा हमें सुनाएंगे और 1 अगस्त के बाद में गीता के 16वें अध्याय पर दैवी संपदा इस पर सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।
ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। दिक्कालाद्यनवचिन्न छिन्नमात्रमूर्तये स्वानुभूतेकाय नमः शांताय तेजसे चूडामणीकृतविधुरयेन वलयीकृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलातांडव पंडिते। ओम शांति शांति शांति।
परम श्रद्धे प्रातृवंद पूज्यपाद श्री प्रेमपुर जी महाराज के चरणों में वंदन। यहां उपस्थित सभी सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, हमारे तिजोरी बालाजी जो इस अवस्था में भी और जब पूछते हैं तो कहते हैं प्रभु की यही कृपा बनी रहे, हम यहां आते रहे। क्या आनंद का जीवन है, बहुत सुंदर जीवन है। हमारे झुंझुनू बालाजी सभी बहुत आनंद से यहां सत्संग श्रवण करते हैं, बड़ा आनंद है। हम विचार कर रहे थे किस विषय पर प्रकाश डाला जाए, तो प्रातःकाल जब हम उठे तो हमने विचार किया श्रावण मास है, क्यों न भगवान शिव की चर्चा कर ली जाए। हम जब यहां पर आए तो महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज का जो प्रवचन था वो था कि उस समय न अंधकार था न प्रकाश था, न सत था न असत था, न सत ना सच्छिव एव केवलः, ये मंत्र की व्याख्या चल रही थी। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। न सत था न असत था, कौन था, केवल शिव ही था, शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। कब, जब ये सृष्टि नहीं थी। ऋग्वेद में लिखा, बहुत प्यारा लिखा है, बड़ा प्यारा लिखा है, वो कहते हैं ना सतासित तदानिम नासत न रजह न व्योमह, उस समय ये अभिव्यक्त जगत नहीं था, सत नहीं था माने सत का अर्थ है दिस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, यह अभिव्यक्त जगत नहीं था तो सत नहीं था। असत भी नहीं था अर्थात अनभिव्यक्त जो जगत अभिव्यक्त नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स फेनोमेन वर्ल्ड, ये जो अनभिव्यक्त जगत जो अभिव्यक्त नहीं था वह भी नहीं था। तो अभिव्यक्त कब होता है, देखो शिवजी की बात करेंगे ना हम, तो शिवजी वैदिक देवता है। शिवजी क्या है, वैदिक देवता है। और एक ऐसे देव है महाराज, आप जितने भी मंत्र बोलते हैं ना, जितने भी श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम शरणम मम, ये कोई भी वेद के मंत्र भाग में नहीं है मंत्र, केवल ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जो वेद के संहिता भाग में आया है और साक्षात आया है। नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय, हो गया ना नमः, ये पंचाक्षर है। ओम लगा देते हैं प्रत्येक मंत्र के साथ, ओम लगता ही है तो षडाक्षर हो जाता है ओम नमः। और भगवान शंकराचार्य ने षडाक्षर मंत्र पर स्तुति लिखी है जिसका पहला मंत्र है ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ये शिव भगवान शिव हैं, ये वैदिक देवता हैं। वेद में लिखा, बड़ा प्यारा लिखा है, एक एव रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः, एक ही रुद्र है दूसरा है ही नहीं। और जहां लिखा असंख्याता हेते रुद्रः, वहां प्रत्येक जीवों के लिए आया है। रुद्र तो एक ही है, दो है ही नहीं। रुद्र को रुद्र क्यों कहते हैं, भगवान शिव के अनेक नाम हैं, हजारों नाम हैं, उनका एक नाम रुद्र है। क्यों है, रोदयति दुष्टान, देखो एक शब्द है रोदयति, एक शब्द है रुदति। जब रुदति प्रयोग करते हैं ना संस्कृत में तो कहता है कि स्वयं रो रहा है ना, अहम रुदामी, मैं रो रहा हूं। और रोदयति का मतलब रुलाता है, रोदयति का अर्थ क्या होता है, रुलाता है। तो रोदयति दुष्टान, जो दुष्टों को रुलाता है। अच्छा भगवान शंकर का क्या नाम है, भोले भाल, क्या है, भोले भाले, भोले भाले है ना, भाला तो समझते ना किसे कहते हैं। अरे भक्तों के लिए भोले हैं तो दुष्टों के लिए वो समझ गए ना, ये तो सीधी सी बात है ना, आप लोग ही तो रोज कहते हैं भोले भाले, तो भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए, तो जो दुष्टों के लिए भाले हैं उनको कहते हैं रुद्र, रोदयति, जो रुला दे किनको, दुष्टों को। और रुद्रात रुदाद्रावती, उसका अर्थ होता है जो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण कर दे, सभी प्रकार के कष्टों का दुखों का जो निवारण कर दे उनको कहते हैं रुद्र, रुद्र कहते हैं। और ये रुद्र जो है बड़े महान है महाराज, बड़े महिमाशाली हैं, इनकी महिमा अनंत है, अनंत महिमावान है, इनके बराबर कोई नहीं है, कोई इनकी बराबरी कर भी नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव सृष्टि के एकमात्र एकमात्र सृष्टि के आधार भगवान शिव हैं, संसार की रक्षा करने वाले एकमात्र भगवान शिव हैं, संसार का पालन करने वाले एकमात्र भगवान शिव हैं। और जब संसार कर्म करते 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 थक जाता है, जैसे आप लोग दिन भर कर्म करते थक जाते तो क्या करते हैं, सो जाते ना, ऐसे ही जब ये जीव जन्म मरण के चक्र में आते आते थक जाता है तो थोड़ा विश्राम देने के लिए सृष्टि का संहार करने वाले भी भगवान रुद्र ही हैं, भगवान शिव ही हैं। और ये श्रावण मास है, श्रावण है ना, तो श्रावण मास में और भगवान शिव की महिमा है। क्यों है, क्योंकि श्रोतव्य, श्रोतव्य माने सुनने योग्य, श्रोतव्य एक ही है वह भगवान शिव, जिनकी कथा हम सुन सकते हैं, जो एकमात्र श्रुति का विषय माने कान का विषय, श्रुति का विषय हो सकते हैं, वह है भगवान शिव। इसलिए श्रावण मास में श्रवण करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वेदों में लिखा है आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य अरे आत्मा को जानना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर का बड़ा प्यारा कहा है, वो कहते हैं किम वानेन धनेन वाजि करिभी प्राप्ते न राज्येन किम किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम ज्ञात्वै तत्क्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरतः स्वात्मार्थम गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। कितना सुंदर कहा, स्वात्मार्थम। स्वात्मार्थम माने अपने आप को जानने के लिए, आत्मार्थम अपने लिए, और स्व माने बिल्कुल अपने लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने तत्व को पहचानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए, दुखों का सदा सदा से निवारण करने के लिए, आवागमन में के चक्र में छुटकारा पाने के लिए, स्वात्मार्थम गुरु वाक्यतः। तो क्या करें हम, तो गुरु के वाक्य का अनुसरण करो। क्या है गुरु वाक्य? यदि आपको जानना है तो श्रोतव्य सुनो। क्या सुने? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य वेद वाक्य सुनो। क्या सुने? वेद वाक्य सुनो। तो वेद वाक्य में क्या लिखा है महाराज? वेदों में क्या लिखा है? वेदों में लिखा है महाराज कि एकमात्र ईश, जो अपनी ईश यानी शासन करने वाली शक्तियों के साथ संपूर्ण विद्याओं और पदार्थों और सबको अनुशासन कर रहे हैं, उस परमात्मा का भजन करो। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति, जो ब्रह्म का यानी वेद के जो स्वामी हैं, जहां से वेद प्रकट हुआ है, ब्रह्मा का जो अनुशासन करने वाले हैं, और सारे के सारे ज्ञान के जो अधिपति विद्याधिपति, ऐसे भगवान जो अपनी शासन करने वाली शक्ति के द्वारा संपूर्ण विश्व का शासन करने वाले हैं, उनका श्रवण करो। उनका श्रवण करो तो उनके श्रवण करने से कल्याण है। शिव किसे कहते हैं? शिवम कल्याणम ददातीति शिवः। जो शिव है उनको शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वे कल्याण को देने वाले हैं। तो क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने? बड़ी सुंदर बात की, किम वानेन धनेन वाजि करिभि प्राप्तेन गेहेन किम किम वानेन धनेन वाजि करिभि प्राप्तेन राज्येन किम। कहते हैं अगर आप बहुत धन इकट्ठा कर लोगे तो भी क्या होगा? हमने सुना है, सुना है, ये हमने देखा नहीं है। एक बहुत बड़ा धनी था महाराज, उसका अपार धन था, और जब उसने अपने सचिव को कहा कि मुझे अपना धन तो दिखा दो, तो अपना धन देखने के लिए गया तो घोड़े पर चढ़ करके वो धन देख पाए, इतना सारा धन था, इतना वैभव था उसके पास। और जब पूरा धन देखा कि इसका उपयोग कौन करेगा, तो पागल हो गया। किम वा धनेन वाजि करिभि, यहां से सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला मोहम्मद गजनवी के पास इतना अपार संपत्ति थी कि बहुत बहुत सारे लंबे चौड़े खेत में उसका वो सोना चांदी सब इकट्ठा हुआ था। जैसे जैसी उम्र ढलने लगी, वो धन को देख करके और पागल सा होने लगा कि इस धन का क्या होगा, इस धन का क्या होगा। ये बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाएं बता रहा हूं, धन का क्या होगा। और अंत में वो धन को याद करके उसकी दुर्गति हुई। किम वा धनेन वाजि करि भी। 2002 की घटना है जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, 2002 की होगी मेरा अनुमान से। तो उसके दो लड़के थे, बड़ा लड़के का नाम था उदय, वो नाम किसी भारत के सन्यासी ने उसका रखा था उदय नाम। तो इतना ऐश्वर्य संपन्न था वो, सद्दाम हुसैन से भी ज्यादा वो भोग विलासिता प्रिय था। लेकिन वो मारा गया, अमेरिका ने मार दिया उसको, उसका सारा का सारा धन वो साथ ले गया, क्या कहां गया उसका? तो किम वा धनेन वाजी करी भी, वाजी माने हाथी, करी वाजी माने घोड़ा और करी माने हाथी। घोड़ा और हाथी आज नहीं रहे तो आज कौन कौन से भाई, मर्सिडीज लगा लो, ओडी लगा लो, फिर जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या क्या, मैं तो जानता नहीं है ना। आप इतना सारा वैभव इकट्ठा करके आपका अपना एरोप्लेन लगा लो, आपका अपना हेलीकॉप्टर लगा लो, पर्सनल एरोप्लेन, पर्सनल हेलीकॉप्टर, इतना सारा प्राप्त करके भी क्या करोगे? मिलेगा क्या? पश्चाताप, रोना। एक बार डेली कार्नेगी की एक पुस्तक है, उसमें हमने पढ़ा कि एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, रदरफोर्ड था या कौन था, नाम तो लिखा है, मैं नाम नहीं याद मेरे। तो उसके मंत्री ने, उसका जो पीए था, उसने पूछा कि क्या तुम्हारी इच्छा है कि अगले साल तुम मेरी तरह सेठ बनो? उसने हाथ जोड़ लिया, मैं नहीं बनना चाहता। क्यों? कहते मैं आपको देख रहा हूं आप कितने दुखी हैं। अगर समझदारी है तो धन कितना चाहिए? तो भाई धन के देने वाले भी भगवान शिव ही हैं। कौन है? शिव ही है। अगर शिव है तो धन चाहिए तो उन्हीं से मांग लो, और नहीं तो किम वा धनेन वाजी करी भी प्राप्ते न राजे न किम। यदि आपने पूरा राज्य भी प्राप्त कर लिया तो क्या है? मुचकुंद की कथा आप सुनते हैं ना, मुचकुंद को जब भगवान श्री कृष्ण मिले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वरदान मांगो। कहते महाराज क्या वरदान मांगू? इस पृथ्वी लोक का मैं राजा था, इस पृथ्वी लोक का, पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती मैं सम्राट था, मैंने वो हालत देखी है, और देवताओं की मैं सहायता करने के लिए गया था, इसलिए मैंने स्वर्ग लोक का भी ऐश्वर्य देखा है, भूलोक का भी देखा है, उनकी दुर्दशा भी देखी है, उनका दुख भी देखा है, और संपत्ति में कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, कितना वैमनस्य, कितना क्या है, सारा मैंने देखा। इसलिए अब ये धन संपत्ति तो चाहिए नहीं, क्योंकि पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट मैं था और स्वर्ग के देवताओं की मैं रक्षा करने के लिए गया था, इसलिए अब ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस केवल आपकी भक्ति चाहिए। प्राप्ते न राजे न किम। अगर पूरा राज्य भी मिल जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? बड़े बड़े राजा चले गए, आए और गए, कौन साथ में ले गए? कोई ले गया? अगर कोई नहीं ले गया तो हम भी ले जाने वाले नहीं है, तो क्या करें? भगवान का भजन करें। किं वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम्। पुत्र किसे कहते हैं? जो माता पिता की सेवा करे। अब नरक का मतलब यही समझ लो आज के युग में सेवा कर दे, है ना? नहीं तो महाराज माता पिता यहां है, पुत्र अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जब माता पिता बीमार पड़ते हैं तो फोन पे पूछ लेते हैं हाउ आर यू। जब तक ब्रीथिंग है तब तक वो आएंगे नहीं, जब देखेंगे बिल्कुल ही बेहोश हो गया तो आएंगे, बड़ी मुश्किल से आएंगे, और चारपाई पर खड़े होकर के, हॉस्पिटल की चारपाई पर खड़े होकर के पूछेंगे हमें पहचाना क्या? अरे तुम्हारे पहचानने के कारण दिन की दुर्दशा ही हुई है, अब कितना पहचानोगे? पुत्र हैं लेकिन हैं पास में नहीं है, और पास में भी हैं तो भी क्या है। पुत्र आपकी सेवा करेगा लेकिन आपको मुक्ति देने वाला, दुखों का निवारण करने वाला नहीं, केवल मोह बढ़ाएगा, मोह अटैचमेंट अटैचमेंट मोह बढ़ाएगा। और गोस्वामी ने क्या लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला ताहिते उपजे बहुविध शूला। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है और उस मोह से अनेक प्रकार के शूल पैदा होते हैं। शूल माने दुख दर्द है ना, जब पेट में दर्द होता है तो क्या कहते हैं उदर शूल, क्या कहते हैं उसको उदर शूल, और जिसको शूल होता है उसको कहते हैं शूली। जैसे धन को धन जिसके पास होता है उसको धनी कहते हैं, जिसके पास शूल होता है उसको कहते हैं। और एक और बात है, अगर आप अपने शूल को दूर करना चाहें तो शूली का भजन करो। शूली समझते हैं किसे कहते हैं, नहीं समझे? अरे राम राम राम, अरे त्रिशूल किसके हाथ में है? वह शिव जी का एक नाम शूली भी है, हजार नाम में से एक नाम शूली भी है। अगर आपको शूल दूर करना है तो शूली का भजन करो है? अगर शूल दूर करना है तो ये जो किंवा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम्, पुत्र पति पत्नी स्वार्थ का संबंध, हमारे यहां तो वैदिक ऋषियों ने बहुत प्रयत्न का विवाह की जो विधि है ना, विवाह की विधि, देखो ये विवाह की विधि पूर्ण रूप से धर्म है। क्या है? इसलिए पत्नी को क्या कहते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि पाणिनि का व्याकरण सूत्र है, व्याकरण का सूत्र पाणिनि ने लिखा, पत्यु यज्ञ संयोगे, जब तक यज्ञ पूर्वक आप पाणी ग्रहण नहीं करेंगे तो पति पत्नी होता नहीं। लव मैरिज हमारे यहां श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, किया ना, चलो आपकी बात मान लेते हैं, श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, लेकिन पत्नी कब बनाया, जब यज्ञ के साथ ने उन्होंने प्रतिज्ञा की। पत्नी का रूप कब दिया, जब यज्ञ के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की। 16,000 राजकुमारियों को भगवान कृष्ण ने छुड़ा दिया, उन्होंने कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कहां जाएं, हमारा कौन है, कोई नहीं हमारा, तो ठीक है मेरे साथ विवाह कर लो। लेकिन इतना कहते कृष्ण चले गए क्या, क्या किया, पढ़ो भागवत में, उतने ही मंडप बनाए गए, उतने ही श्री कृष्ण ने अपने आप को प्रकट किया। तो ये जो पति पत्नी का संबंध है, हमारे ऋषियों ने इसको धर्म के रूप में दिया, ताकि ये संबंध करके आप अपने जो वास्तविक लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसको प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, आपस में कलह विवाद, 20 साल हो जाती शादी करने को तब भी पत्नी कहती है जी तो कुछ जानती ही नहीं, फिर भी क्या कहती, पति के लिए तो कुछ जानती नहीं। पति को गुस्सा आता तो क्या कहता, चुप रहो तुम्हें क्या मालूम, अरे 20 साल में एक दूसरे को नहीं जान पाए, कोई किसी को जान भी नहीं सकता, केवल अगर जान सकता है तो आप स्वयं अपने आप को जान सकते हो, किसी दूसरे को नहीं जान सकते। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहना है कि हम इनको जानते या हम इनको जानते, जानना है तो केवल अपने आप को जानना है, बाकी कोई किसी को नहीं जानता। तो ये जो पुत्र है कलत्र है मित्र है, ये इस लोक तक तो ठीक है, इस लोक तक तो ठीक है, लेकिन जब परलोक की आप यात्रा करें, परलोक की जब आप यात्रा करेंगे तो इनको छोड़ करके, और महाभारत का प्रसंग आप जानते हैं, मैं तो ऐतिहासिक उदाहरण दे रहा हूं ताकि बैठ जाए दिमाग में, जब वो स्वर्गारोहण गए माने फॉरेन गए वो, है ना, फॉरेन ही तो था ना, जब वो स्वर्गारोहण गए तो किसको साथ ले गए, वो द्रौपदी गिर गई, युधिष्ठिर ने क्या कहा, गिर जाने दो आगे बढ़ो, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या द्रौपदी से प्रेम नहीं था? नहीं, द्रौपदी के केश बंधन के लिए तो दुशासन को मारा था भीम ने, प्रेम तो है लेकिन संदेह क्या है? संदेश क्या है? संदेश यह है, अगर आप अध्यात्म पथ पर चलना चाहते हैं तो अध्यात्म के मार्ग पर ये संसार के सारे संबंध आपको विसर्जन करने होंगे, सबको विसर्जन करना होगा, लेकिन जान करके नहीं, अपने आप छूट जाएंगे। द्रौपदी गिरी, गिराया नहीं, द्रौपदी को गिराया नहीं, द्रौपदी गिर गई। नकुल सहदेव को छोड़ा नहीं, छूट गए। अर्जुन भीम को छोड़ा नहीं, छूट गए। आप भी छोड़ना नहीं, भजन करना, अपने आप छूट जाएंगे। इस जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। किंवा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहे न गेहे न किम। अगर सुंदर देह मिल गया तो क्या होगा? भर्तृहरि कहते हैं काये कृतांतात् भयम्। शरीर सुंदर मिल गया तो बुढ़ापे का डर महाराज झुर्रियां पड़ जाएंगी। बुढ़ापे का डर कितना हम इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना तो भोजन करते हैं, रबड़ी खाते हैं, मलाई खाते हैं, कितने तरह के फल खाते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, और फिर भी अगर सुंदर नहीं बनता तो ऊपर से क्रीम पाउडर और लपेट लेते हैं। अगर फिर भी कहीं सुगंधी नहीं जाती तो ऊपर से नकली सुगंधी और लगा लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम, और नकली सुगंधी लगा लेते हैं। अरे शास्त्र कहते हैं अपने जीवन में अपनी सुगंधी अपने आप पैदा करो, सद्गुण सद्विचार और सदाचार से जो सुगंधी है वही ओरिजिनल है, बाकी तो डुप्लीकेट है। तो शरीर मिल गया तो क्या, एक दिन तो ये छूटेगा, जाएगा, हमारे पास रहने वाला नहीं है। और घर बना लिया तो क्या, महल बना लिया तो क्या, हमारे तो झुंझुनू वाला जी जानते हैं, जिन सेठों ने राजस्थान में बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई उन हवेलियों में कबूतर और चमगादड़ रहते हैं।